कल रात झोपड़ी के बाहर उन्हें उनके पति शमशेर सिंह बुंदेला लेकर आए थे, पर आज वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने अपने पति की तलाश में फिर से आज इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन अफसोस, वो कहीं नहीं दिखाई पड़े। झोपड़ी के अंदर जाकर अपने सवालों के जवाब खोजने की हिम्मत शत्रुपा देवी के अंदर नहीं हो रही थी। उन्होंने बाहर से ही उस झोपड़ी को गौर से देखना शुरू किया कि शायद कहीं तो उन्हें कुछ क्लू मिल जाए, जिससे कि उन्हें अपने सवालों के जवाब को ढूंढने में आसानी मिले। एक आधा अधूरा नक्शा कल रात भी उन्होंने उस झोपड़ी का अपने दिमाग में खींचा था, पर आज जो झोपड़ी दिखाई पड़ रही थी उस टूटी फूटी झोपड़ी से कुछ अलग ही दिखाई पड़ रही थी। वो बाहर से ही घूम घूम कर उस झोपड़ी को देख रही थी, लेकिन झोपड़ी के दरवाजे और खिड़कियां बंद थे और शत्रुपा देवी के अंदर उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उनके कानों में एक सुमधुर मीठी सी आवाज आई। आवाज इतनी मीठी थी कि दिल का सारा डर उस आवाज में खोता जा रहा था, और उस आवाज में घुली हुई विरह की तड़प धीरे धीरे शत्रुपा देवी के दिल तक उतर रही थी। दूर कहीं कोई औरत ठेठ राजस्थानी अंदाज में पिपली के विरह गीत गा रही थी, जिसका अर्थ था, सैया मत जाओ परदेस, जितना धन चाहिए तो है मैं तुम्हें ला दूंगी, लेकिन मुझे छोड़ परदेस न जा, इस पीपल के पेड़ के नीचे अपनी जोगन को ऐसे न सता, बस अब आ जा बाहों में मेरे, मुझे तुम्हारा इंतजार है। शत्रुपा देवी उसी आवाज को खोजते खोजते उसी डायरेक्शन में जाने लगी। उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहा कि वो कहाँ जा रही हैं। उनके पैर तो जैसे इसी आवाज के पीछे हिप्टोनाइज होकर बढ़ते चले जा रहे थे। पहले पढ़ाई के कारण शमशेर सिंह बुंदेला विदेश चले गए थे, और फिर उसके बाद यहाँ आने पर उन्होंने राजगढ़ डोमिनेट्रिक्स सारी अरेंजमेंट अपने हाथों में ले ली थी, जिसके कारण उन्हें बहुत कम समय मिल पा रहा था। पति के साथ रहने पर भी उन्हें विरह का दर्द उन्होंने महसूस किया था, जो उनके दिल में आज तक जमा था। उसके बाद तो हमेशा के लिए पति का साथ उनसे छूट गया था। जो दर्द उनके दिल में जमा था, वो दर्द उन्हें इन गीतों में सुनाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की कोई गीत नहीं गा रही, बल्कि उनके दिल की बातों को ही अपने गीतों में सुना रही है। वो बगीचे में काफी दूर तक अंदर चली आई थी, लेकिन आवाज जितने नजदीक से आती हुई सुनाई पड़ रही थी, दूरी उतनी ही अधिक बढ़ती जा रही थी। वो बस चलती ही जा रही थी, और चलते चलते बिल्कुल बगीचे के बीचों बीच आ गई थी, जहां से कि अब सिर्फ रात के अंधेरे में काले काले पेड़ दिखाई पड़ रहे थे। हल्की रोशनी भी थी, पर ये रोशनी कहाँ से आ रही थी ये पता नहीं चल पा रहा था। जिस आवाज की तलाश में शत्रुपा देवी यहाँ तक आई थी, अचानक से वो गीत बंद हो गया। कानों को वो आवाज सुनाई देनी ही बंद हो गई थी। शत्रुपा देवी का हिप्टोनाइजेशन जैसे बीच में ही टूट गया था, और जहां सबसे पहले दिल में डर था और उसके बाद विरह का दर्द, अब उसी दिल में बेचैनी से उठने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उनका सबसे खूबसूरत सपना तोड़ दिया हो। उन्होंने उस आवाज की तलाश में फिर से अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई। आखिर कौन गा रहा था और अचानक से चुप क्यों हो गया? शत्रुपा देवी के दिल में उतरी हुई बेचैनी उनकी आंखों से छलकती हुई उस गाने वाली लड़की को खोज रही थी। तभी शत्रुपा देवी को उन पेड़ों के बीच रंग बिरंगी चटकदार कपड़ों में एक लड़की दिखाई पड़ी। लड़की की उम्र मुश्किल से 17-18 साल होगी। उसकी मासूमियत उसके अंग अंग से टपक रही थी। शत्रुपा देवी बहुत ध्यान से उस लड़की को देखे गईं, जो कि अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी। वहीं पर बगीचे में कुएं में से पानी निकालने के काम में लगी हुई थी। उसके बगल में एक सोने का घरेलू घड़ा रखा हुआ था। शत्रुपा देवी ध्यान से उस घड़े को देखने लगी। खूबसूरत डिजाइन वाला कर्व्ड वाटर जग किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काफी था। इस अंधेरी रात के समय में भी प्योर गोल्ड से बना हुआ ये वाटर जग, जिस पर खूबसूरत डायमंड और मोती जैसे स्टोन लगाए गए थे, अपनी चमक से आसपास एक खूबसूरत लाइट बिखेर रहा था। इस घड़े को चमकने के लिए अलग से कहीं अलग से लाइट की जरूरत नहीं थी, इसकी खूबसूरती काफी थी, और ऊपर से उस लड़की का दूधिया गोरा रंग, दोनों कहीं से भी इस अंधेरी रात का हिस्सा नहीं मालूम पड़ रहे थे। माना कि लड़की बहुत खूबसूरत लग रही है, पर अपने पहनावे से एक साधारण परिवार की ही लगती है। हो सकता है कि किसी आसपास के किसी वर्कर फैमिली की है, पर इस लड़की के पास इतना कॉस्टली पॉट कहाँ से आया? लड़की की तरफ शत्रुपा देवी ने एक कदम आगे की ओर बढ़ाते हुए मन में सोचा। तभी उस लड़की को, जो कि कुएं से रस्सी खींच रही थी, शत्रुपा देवी के आने की आहट मिल गई थी। उसके होठों पर एक मिस्ट्री स्माइल तैरने लगी। उसने बिना मुड़े ही पूछा, क्या हुआ रानी सा, इधर का रास्ता आज कैसे भूल गई? कहो तुम्हें क्या चाहिए? उस रंग बिरंगे कपड़े वाली लड़की ने अपने सम्मोहित कर देने वाली आवाज में शत्रुपा देवी से पूछा। उस लड़की की आवाज में बिल्कुल पारंपरिक राजस्थानी टोन था। शत्रुपा देवी ने उस लड़की की बात को सुनकर भी जैसे अनसुना कर दिया, क्योंकि शत्रुपा देवी का ध्यान अभी भी उस घड़े में ही लगा हुआ था। क्योंकि जैसे जैसे शत्रुपा देवी के कदम उस वाटर जग की तरफ बढ़ते जा रहे थे, उनका मुंह हैरानी से खुलता जा रहा था। वो घड़ा देखने में जितना सुंदर और कॉस्टली लग रहा था, उसके अंदर रखी हुई चीज उससे भी ज्यादा खूबसूरत और कॉस्टली थी। उस वाटर जग में पानी नहीं भरा था, बल्कि घड़े के मुंह तक केवल सोने के सिक्के और बेशकीमती हीरे मोती के गहने दिखाई पड़ रहे थे। ये सब क्या है? शत्रुपा देवी के मुंह से आश्चर्य में खुद से ही निकल गया।